अर्पा रेडियो पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सचिव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सबका रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। मैं हूं आपका दोस्त सजीव सारथी। दोस्तों, आज के हमारे विशेष मेहमान हैं इस कार्यक्रम में स्क्रीन प्ले, डायलॉग और स्टोरी राइटर रितेश शाह, जिनकी लिखी हुई ढेरों फिल्में हम देख चुके हैं पिछले दशक में। नमस्ते लंदन, कहानी, बीए पास, डी डे, सिटी लाइट, मदारी, एयरलिफ्ट और अभी हाल ही में प्रदर्शित पिंक इनकी एसोसिएटेड फिल्में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत रितेश आपका कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में।
थैंक यू सचिव मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
रितेश भाई, आपके रचनात्मक सफर पर हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले ये बताइए कि लेखन का, विशेषकर फिल्म लेखन का शौक आपको कब, कहां और कैसे पड़ा?
ये तो एग्जैक्टली अब याद ही नहीं आ रहा है कि कब कीड़ा दिमाग में घुसा। लगता है कहीं कॉलेज के बाद से, जब मैं नाटक लिखने लगा था एक्को नाट ग्रुप के लिए, उसके बाद लगा शायद कि मैं फिल्म लेखन करूं। और सबकॉन्शियसली तैयारी तो मेरे ख्याल से बचपन में ही अच्छी फिल्में देखने से ही शुरू हो गई। मेरे ख्याल से सलीम जावेद की फिल्मों का काफी मुझ पर असर रहा। हो सकता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तभी मैंने डिसाइड कर लिया हो कि आगे जाके ऐसा कुछ करना चाहिए।
ओके, तो सलीम जावेद जोड़ी में काम करते थे, आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी कोई जोड़ीदार बनाएं? क्योंकि ये जो काम है इसमें स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है और डायलॉग है, तो अगर दो लोग मिलकर काम करते हैं तो काफी इजीली वो पूरी फिल्म को अपने हिसाब से चला पाते हैं। जैसे सुरेश नायर के साथ आपने काफी काम किया है, तो कभी इस तरह से विचार दिमाग में आया आपके?
नहीं, ऐसा तो कभी विचार मन में आया नहीं। सुरेश का आपने नाम लिया तो सुरेश के साथ मेरी काफी अच्छी फिल्में शुरू से ही आती रही और ऑब्वियसली उनके काम की मेरे काम में और मेरी वजह से उनके काम में काफी हेल्प होती है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद कुछ किया जा सकता है जो बहुत सिंपल हो या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई हो, वो आप आराम से खुद कर सकते हैं। और जहां जहां कोलैबोरेशन की जरूरत महसूस हुई वहां पे जरूर कोलैबोरेट करना चाहिए। बट इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, क्योंकि आपको साथ बहुत देर तक काम करते रहना होगा, तो अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। हर किसी के साथ आपका पेयर बन नहीं सकता।
जी रितेश, एकदम सही कहा आपने। इसी बात को मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ कि आप एलोबरेट करें कि जैसे आप एक स्क्रीन प्ले जब आप लिखते हैं, या समझिए आप डायलॉग लिख रहे हैं और स्क्रीन प्ले किसी और ने लिखा हुआ है, तो ये जो सामंजस्य है वो कैसे आप एक दूसरे के साथ बिठाते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रोता है वो ये जो फिल्मी प्रक्रिया होती है लिखने की, इसके बारे में जानते नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा आप ये क्लैरिफाई कीजिए कि दो अलग अलग लोग किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं।
देखिए, वेस्ट में या कहीं पे भी स्क्रीन प्ले और डायलॉग के बीच का डिवीजन है ही नहीं। यदि आप डायलॉग नहीं लिख सकते तो आप स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते, ऐसा वहाँ पे है अगर आप भाषा नहीं जानते। हमारे यहाँ क्या हुआ कि शुरुआती डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर्स, उनकी जबान हिंदी नहीं थी और इसलिए हमको हिंदी से कुछ राइटर्स डायलॉग लिखने के लिए लेने पड़े। अब यहाँ पे कई बार लाइन्स क्रॉस हो जाती हैं, डायलॉग लिखने वाला स्क्रीन प्ले ठीक करने लग जाता है और स्क्रीन प्ले वाला भी कई सारे डायलॉग उसमें लिख देता है भले ही अंग्रेजी में लिखे। अब उसमें यही है कि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा था कि कहीं पे भी किसी का ईगो अच्छे काम के आगे नहीं आना चाहिए। सुरेश और मेरे बीच में जैसे ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई, बट कहीं पे किसी को लग सकता है कि भाई ये मेरा एरिया था और यहाँ पे किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
ओके, इट मींस अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो दो लोगों के बीच तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अच्छा रितेश, जैसे आपने बताया कि आपने पहले नाटक लिखे, उसके बाद आपको लगा कि आपको फिल्मों के लिए लिखने चाहिए, तो आप मेरे ख्याल से शायद दिल्ली से थे उस वक्त, मुंबई आने का जब फैसला लिया तो क्या विचार दिमाग में थे कि कैसे आप अप्रोच करेंगे डायरेक्टर्स को? क्या आपके पास कहानियों का कुछ बंडल्स थे, आप समझिए कुछ आइडियाज थे, क्या थे?
एक्ट वन का एक नाटक था जो मुंबई से आए हुए एक हीरो ने देखा और कहा कि भाई आप ये फाइल ले आइए, इस पे राम गोपाल वर्मा जी पिक्चर बनाएंगे। और वो फाइल लेके मैं आ गया और उनके साथ बात भी हुई सैटरडे को, बट फिर उनका मुझे बुधवार तक फोन मिला ही नहीं या उन्होंने उठाया नहीं, तो ऐसे फैसला और कहानियों के बंडल तो नहीं थी, बट यही स्क्रिप्ट थी जो कभी बनी नहीं। और फिर मैंने सोचा घर पे बैठा बैठा क्या करूं, तो अपने दोस्त के साथ चला गया कोई टेलीविजन के दफ्तर में, और वहां पे उन्होंने मुझे कगार नाम का सीरियल था तो उसकी राइटिंग ऑफर की। तो नाटक से मैं एक अलग ही मीडियम में चला गया, फिल्म तक पहुंचते पहुंचते वो था टेलीविजन। फिर टेलीविजन पे मेरा काम कुछ लोगों ने देखा, जैसे अनुराग कश्यप पहले राइटर थे फिर डायरेक्टर बने, अभी राइटर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप फिल्मों में ट्राई कीजिए, और कुछ लोगों से उन्होंने मुझे मिलवाया जिनमें से एक निखिल अडवाणी थे जिनमें बाद में एयरलिफ्ट प्रोड्यूस की, तो इसी तरह ये सिलसिला शुरू हुआ।
ओके रितेश, तो सबसे पहला ब्रेक फिल्म का आपको किसने दिया?
होम डिलीवरी नाम की एक पिक्चर थी जिसकी शूटिंग बस स्टार्ट होने ही वाली थी। दिक्कत ये थी कि दो ही सीन हिंदी में थे जो मिलाप जावेद ने लिखे हुए थे, और फिर ब्रेक कर रहे थे, बिजी हो गए थे। और उस फिल्म में मुझे बतौर फोर्थ डायलॉग राइटर जिसको थर्ड क्रेडिट मिला था बिलिंग में, वो मेरी पहली पिक्चर थी और पिक्चर कामयाब नहीं हुई। बट उसके बाद नमस्ते लंदन जिसमें सुरेश राइटर थे उसमें मुझे मौका मिला और वो फिल्म चल गई थी, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा।
जी, तो नमस्ते लंदन में भी आपने संवाद लिखे शायद?
जी, मैंने वही कहा आपसे पहले कि लाइन जिसमें कई बार ब्लर हो जाते हैं, तो डायलॉग का ही मेरा क्रेडिट था, हालांकि सुरेश का भी डायलॉग में क्रेडिट है क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजी में तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट पूरी लिखी थी। और अपने हिसाब से मैंने कई सीन्स भी लिखे क्योंकि डायलॉग लिखते वक्त आपकी जरूरत उस तरह की पड़ जाती है कई बार, बट एंजॉयबल था मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस।
ओके रितेश, अच्छा अभी तक आपने जितनी भी फिल्में लिखी हैं या तो उनकी स्टोरीज जो हैं वो किसी और ने लिखी होती है, या फिर वो फिल्में किसी नोवेल पर आधारित होती है, या फिर कहें कि कोई बायोग्राफिकल जैसे एयरलिफ्ट जैसी कोई फिल्म होती है, तो आपकी जो अपनी कहानियां हैं वो हम लोग कब देख सकते हैं पर्दे पर? कोई ऐसी फिल्म आप करने जा रहे हैं क्या?
आजकल हमारे ऊपर एक नई ही तलवार लटकी होती है जिसको NDA या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बोलते हैं, तो ऐसी ही फिल्में हैं जिनकी कहानी भी मैंने की हुई है और स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी। बट पीछे अगर मैं जाऊँ तो हाँ, मोस्टली ऐसी फिल्में हैं जहाँ कहानी किसी और ने की है। बट डीडे अगर आप देखें तो डीडे में कहानी मेरी है, और पिंक में भी हमने मिलके ही कहानी पे काम किया था शुजिता मैंने और टोनी गाने, और आगे भी ऐसी कुछ फिल्में आएंगी प्रॉपर टाइम पे, शायद जब अनाउंस होगा तभी मैं बता पाऊंगा।
जी रितेश, हमें इंतजार रहेगा। वैसे जितनी भी फिल्में आपने अब तक की हैं उनका कलेवर जो है वो आम कमर्शियल फिल्मों से काफी अलग हटके रहा है। ऐसी एक फिल्म आपकी इस साल आई है जिसका नाम है तीन। कहानी काफी अच्छी, काफी डिफरेंट थी, और अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन और विद्या बालन जैसे मंझे हुए कलाकार भी थे इस फिल्म के अंदर, लेकिन फिल्म नहीं चल पाई। तो क्या वजह देखते हैं आप इस फिल्म के फ्लॉप होने की?
वजह तो ठीक से बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर हम इतने ही एक्सपर्ट्स होते तो हमारी कोई पिक्चर फ्लॉप ही नहीं होती। बट मेरे ख्याल से वो एक खास एज ग्रुप के लिए पिक्चर है क्योंकि एक सेंस ऑफ लॉस है फिल्म में, किसी को खोने के एहसास के बारे में है पिक्चर, और हमारी ज्यादातर यूथ ऑडियंस जाती है जो फिल्मों को कामयाब बनाती है। शायद वो इस फिल्म में नहीं गए, उस टाइम एक पॉपुलर हॉरर फिल्म कंजूरिंग का पार्ट 2 रिलीज हुआ था, शायद वो लोग उसे प्रेफर किया उन्होंने 3 के कम्पेयर। बट अगर आप पिक्चर देखें तो पिक्चर अच्छी है, जरूरी नहीं है हर फिल्म 100 करोड़ करे। अपने हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से ठीक किया पिक्चर ने, और बेहतर कर सकती थी जिससे खुशी होती।
जी रितेश, देखिए सक्सेस और फेलियर तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो जो सफलता आपको तीन में नहीं मिली उससे कई गुना अधिक सफलता आपको पिंक में जनता ने दिया। तो पिंक के बारे में हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने पिंक की चर्चा क्यों नहीं करी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पिंक पर हम लोग विस्तार से एक विमर्श करेंगे जिसमें मैं आप श्रोताओं के मिले हुए सवालों को भी रितेश के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक गाना पिंक का सुन लेते हैं, तो एक सॉन्ग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं लौटता हूँ फिर से रितेश के साथ।
कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाऊं छैली धूप मैली क्यों हैरी। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों हैरी।
दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है अपने दोस्त अपने साथी सजीव सारथी के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में स्क्रीन राइटर रितेश शाह, जिनकी फिल्म पिंक ने बहुत जबरदस्त कारोबार ही नहीं किया बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उसको समाज के सामने रखा है, जिस पर बहुत विमर्श चल रहा है और बहुत से लोग इस फिल्म के सब्जेक्ट के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो रितेश ये बताइए कि अब सफलता का स्वाद तो आपने बहुत पहले चख लिया था, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स इस बार आपको पिंक के बाद मिल रहा है अभूतपूर्व है, तो ये फीलिंग आपको कैसी लग रही है इस बार?
मेरे लिए तो बहुत ही अनोखा है ये सब, इतना रिस्पॉन्स शायद ही मुझे कभी मिला हो। और बच्चन साहब बता रहे थे कि 40 साल में उन्हें भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वो शायद इस वजह से है कि मुझे नहीं लगता पिंक को लोग पिक्चर की तरह देखते हैं या उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग को पटकथा और संवाद की दृष्टि से देखते हैं। आई थिंक पिंक में ऐसा कुछ है जो ऑडियंस ऑलरेडी फील करती थी, शायद बोलती भी थी कुछ अलग तरीके से। पिंक ने शायद उनको एक इको दिया है, मतलब उनको एक एक्सप्रेशन दिया है। इस वजह से वो ये कहते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो पिक्चर की तारीफ नहीं होती, वो आई थिंक उन ख्यालों की तारीफ है जो कॉमन है हमारे और हमारी ऑडियंस के बीच में। इसलिए शायद इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है कि पिंक रही नहीं हमारी, अब वो कहीं ना कहीं वो एक ऑडियंस की वॉइस है वो।
जी रितेश, एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है ये, और जब से मैंने ये फिल्म देखी है मैं यकीन मानिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। तो एक ये इंटरव्यू जो मैं आप ले रहा हूँ आपका, इससे पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पर सोचा कि क्यों ना जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग इसको देख चुके हैं, इस पर चर्चाएं चल रही हैं, तो अपने जो श्रोता हैं रेगुलर श्रोता हैं उनमें से भी मैंने सोचा कि उनके कुछ सवाल जो है इस फिल्म से रिलेटेड वो आपके सामने रखूं और आपसे उनके जवाब उन तक पहुंचाऊं। तो मुझे काफी सारे सवाल मिले, मैं सबको नहीं शामिल कर पा रहा हूं, कुछ मैंने चुने हैं जो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अनुराग शर्मास क्वेश्चन। अनुराग शर्मा जो है वो पिट्सबर्ग में रहते हैं, एक अच्छे कवि हैं और लेखक हैं, कहानियां भी लिखते हैं। तो इनका जो सवाल है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये लिखते हैं कि एज्यूमिंग कलर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर इन प्लेन डिस्क्रिमिनेशन इज इट ए लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड हैज नो रिलेवेंस इन इंडिया एनीवे। हाउ कम दिस फिल्म डिडंट फाइंड अ गुड टाइटल। ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल पिंक ही था, और अगर पिंक रखा गया तो क्यों रखा गया, क्योंकि इनको लगता है कि इससे बेहतर टाइटल हो सकता था। तो एक रीजन आप बताइए कि क्यों इस फिल्म का टाइटल पिंक है।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सजीव, और अनुराग जी की बात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि पिंक को जेंडर के साथ जोड़ना एक अमेरिकन मर्चेंडाइजिंग ट्रिक थी जो कि 60 के दशक तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी कि ब्लू इज़ फॉर बॉयज़ पिंक इज़ फॉर गर्ल्स, लेकिन हमने जेंडर के नाम पे इसका टाइटल रखा ही नहीं, क्योंकि पिंक का असली मतलब है कंपैशन। पिंक कंपैशन की भावना को सिग्निफाई करता है, और हमने ये टाइटल लड़कियों की वजह से नहीं रखा बल्कि जो उसमें बच्चन साहब का किरदार जो उनके लिए फील करता है उस कंपैशन की भावना का नाम पिंक है। अच्छा बुरा तो मुझे मालूम नहीं, बट एक आयरनी इन्वॉल्व है इसमें इनहेरेंटली कि आप एक ऐसा कलर जो है नॉर्मली उनके साथ एसोसिएट करते हो, उस कलर का असली मतलब आप नहीं समझते। आई होप आई हैव आंसर्ड अनुराग जी क्वेश्चन।
वेरी नाइस आंसर रितेश। अगला सवाल जो मैं रख रहा हूँ वो मुंबई के एक फिल्म रिपोर्टर है जिनका नाम है चंडी दत्त शुक्ल। चंडी दत्त का जो सवाल है वो बहुत ही प्यारा है, और ये लिखते हैं कि आमतौर पर ज्यादातर पुरुष स्त्री के लिए सामान संसार की हिमायत सिफारिश और साथ की बात तो कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ भारी धरातल पर ही होता है। मन से ज्यादातर पुरुष प्रित सत्तात्मक सोच के से ही ड्राइव होते हैं। आपने खुद को एक मर्द की गिरफ्त वाली सोच से कैसे आजाद किया, और एक स्त्री की पीड़ा, संघर्ष और सपने को किस तरह पहचान पाए पिंक की राइटिंग के लिए। साथ ही ये जानना चाहते हैं कि क्या इस पूरी लेखन प्रक्रिया में कोई स्त्री आपके लिए प्रेरणा का सबब बनी है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आई थिंक कुछ 100 से ऊपर महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां इसकी इंस्पिरेशन है। मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी कजिन्स हैं, मेरी कुलीग्स हैं, मेरी परिचित लोग जो लड़कियां हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसमें जो पिंक एक्चुअली मेरी लेखनी है ही नहीं, ऐसी बहुत सारी फलकलियों की आवाज़ है ये, और जो फील करती हैं, जो महसूस करती हैं। जैसे उसमें मीनल का एक डायलॉग था पिंक में कि जब कोई ऐसे छूता है तो कैसे महसूस होता है। अब वो मैंने तो सीधा किसी एक लड़की जो है उसकी फीलिंग आपको बताई है, उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि कुछ 40 लड़कियां मेरी कजिन्स हैं, बुआ की साइड से, मासी की साइड से, चाचाओं की साइड से, सबकॉन्शियस तैयारी है। और मेरी माँ की सीख, ये सब सबकॉन्शियस तैयारियाँ रही हैं पिंक को लिखने की, और एक दिन वो आया और मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य है मेरे ख्याल से।
रितेश भाई, ये अगला सवाल है कुलवंत हैप्पी जी का, जो कि एक ब्लॉगर हैं, और ये दो चीजें आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक, इन्होंने कहीं पढ़ा है कि ये फिल्म जो है पहले बांग्ला में बन रही थी लेकिन सुजीत ने इसको हिंदी में बनाने के लिए इंसिस्ट किया, तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब इसका बांग्ला संस्करण भी बनाया जाएगा या नहीं। और दूसरी बात ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि मनोरंजक फिल्मों के संवाद लिखना ज्यादा आसान लगता है या पिंक जैसी गंभीर फिल्मों के?
कुलवंत जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि पिक्चर की पृष्ठभूमि भी कोलकाता थी और शायद बंगाली में ही बनती, लेकिन पहले सुजीता को और मुझे भी लगा कि दिल्ली में ये कहानी शायद बेहतर रहेगी और इसे एक ऑल इंडिया लेवल पर बनाना चाहिए ताकि बहुत लोगों के साथ सेम कॉमन इश्यूज ये कम्युनिकेट कर सके। अब वैसे तो पिंक भी एक किस्म का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, कोशिश तो हमेशा एंटरटेनमेंट की ही रहती है। शायद उनका सवाल ये है कि क्या बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनर के संवाद लिखना मुश्किल है या पिंक जैसी थोड़ी थॉटफुल टॉपिकल फिल्मों के? मुझे लगता है दोनों ही काम मुश्किल हैं। एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनर में भी रुलाना हंसाना आसान तो नहीं होता, और ऐसी फिल्मों में डायलॉग जैसा साउंड करे तो ख़राब लगता है। तो मेरे ख्याल से हर फिल्म के अपने चैलेंजेस होते हैं और हमेशा एक्सप्रेशन तो मुश्किल ही होता है अनलेस बहुत नेचुरली आ जाए।
रितेश भाई, फिल्म समीक्षक दीपक दुआ जो है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि तारे जमीन पर, मुन्ना भाई, MBBS और PK जैसी फिल्में भी पिंक की ही तरह बेहद सार्थक और एक अच्छे संदेश वाली फिल्में थी, लेकिन इनका जो असर है वो केवल सीमित लोगों तक और केवल सीमित समय तक ही रह पाता है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा क्या किया जा सकता है कि इन फिल्मों का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो लंबे समय तक लोगों के जहन में ताज़ा रहे।
ये तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है शायद लिमिटेड असर भी कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक TV पे आने के बाद और लोगों तक थोड़ी बात पहुंचती है, बट हमेशा मुझे फिल्मों में यही लगा है कि 1 in 1 million, अगर एक आदमी का भी सुधार या उसके दिल में कोई ऐसी इच्छा पैदा करती है कोई मैसेज ओरिएंटेड फिल्म, तो वो भी कोई बुरी एवरेज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज सिनेमा के थ्रू लाना मुझे लगता नहीं संभव है। लोग ज़्यादातर 18 साल की उम्र के बाद सुधरते नहीं हैं, उनकी ज़्यादातर धारणा वैसे ही रहती है, बट कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर 1 in 1 million ना भी मिला तो 1 in 10 million कुछ तो मिला, कुछ तो सार्थक हुआ आपका लिखना या फिल्म बनाना। बट हाँ, कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से टेलीविज़न पे आना उसकी रीच को थोड़ा बढ़ाता है। उसके अलावा फिल्म क्लब्स प्रमोट कर सकते हैं, फिल्म समीक्षक प्रमोट कर सकते हैं, रेगुलर ब्लॉगर्स जैसे हैं वो प्रमोट कर सकते हैं ताकि फिल्म की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।
अच्छा, अगला सवाल मैं जो लेने जा रहा हूँ वो हरदीप सिंह कुंवर का है, और ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग हटकर है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सब लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में अभी भी जो डाउट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और वो जानना चाहते हैं कि फिल्म में उन डाउट्स को क्यों नहीं क्लियर किया गया। तो इनका जो सवाल है वो पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ गलत हुआ, उनके खिलाफ वो डटकर लड़ी, मजबूती के साथ लड़ी, जितना जरूरी था उतना सपोर्ट उन्हें मिला, निर्णय उनके पक्ष में भी आया, लेकिन एक भी दिशा निर्देश उन्हें नहीं दिया गया। मसलन लड़के पी सकते हैं, भले ही बुराई हो लड़के पी सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं पी सकती? क्या समाज के लिए उचित संदेश है? लड़की पी कर अपनी सहमति से लड़कों के कमरे में जा सकती है और किसी भी इरादे से, तो क्या ये सही है? और ये जानना चाहते हैं, पूरी कोर्ट में लड़की के मुंह से कहलवाना कि कई लड़कों के साथ संबंध बना चुकी है, क्या ये समाज में सही संदेश दिया गया? तो ये जानना चाहते हैं कि लड़कों की सारी गलती थी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, दिलवाई गई, बिल्कुल सही, लेकिन क्या लड़कियों की कुछ भी गलती नहीं थी? क्या उन्हें एक भी सलाह नहीं दिलवाई जानी चाहिए? ये समाज के हित में सही है? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि हमने किसी लड़की को क्यों नहीं इसको सलाह दी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा समाज हर तरह के सोच से मिलकर बनता है, तो हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए ही होता है।
पिंक में हमने सलाह तो लड़कों को भी नहीं दी है, पिंक में हमने आपको देश के कानून में जो लिखा है उससे आपको अवगत करा रहे हैं। ये सब करने के बावजूद जो पिक्चर में बताया गया है, अगर लड़की ना करती है, इनकार करती है, तो उसे आपको ना ही समझना है और फिजिकली आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ये मॉरली गलत है और कोई लेक्चर नहीं है मेरे या बच्चन साहब या सुजिदा या टोनीदा की तरफ से, ये देश का कानून है। नो मीन्स नो कंसेंट लॉ के बारे में है, जो कि हमारे लॉ का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जहाँ तक पीना है या सेक्सुअल हिस्ट्री है या स्मोकिंग है, वो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, उनके बारे में हम लोगों को क्या संदेश दें, वो खुद समझदार हैं, बट उनकी हिस्ट्री को आप उनके खिलाफ यूज नहीं कर सकते, उनकी कनपट्टी पे आप बंदूक नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ लड़की के लिए बुरी है वो लड़के के लिए भी बुरी है, लेकिन हमारे मापदंड हमारे पैमाने अलग हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है। सलाह जो है पर्सनल चॉइसेस की, उसके ऊपर तो पिंक में बात ही नहीं हुई। सलाह तो किसी को नहीं दी गई, सलाह की जगह कानून क्या है, कानून क्या कहता है, ये हमने पिंक में बताने की कोशिश की।
एकदम सही है रितेश, आपने बिल्कुल सही बात कही। आमतौर पर जो हमारी जजमेंट होती है लड़कियों के प्रति, कि उनके जो कपड़े हैं, जो उनका पहनावा है, या फिर उनका जो जीवन जीने का तरीका है, जो दिनचर्या है, उसके आधार पर हम लोग अपनी जजमेंट्स बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनके साथ बिहेव करते हैं। तो फिल्म में बहुत ही क्लियरली ये चीज हमने दर्शाई है कि नो मीन्स नो, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और मुझे लगता है कि शायद कुंवर जी फिल्म देखकर अभी क्लियर नहीं कर पाए थे शायद कि उनको मैसेज, लेकिन आपकी बात सुनकर उन्हें, मुझे लगता है कि उन तक संदेश पहुंचा होगा जरूर। तो रितेश बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इन सब सवालों के जवाब बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ दिए। अच्छा अब ये बताइए कि आने वाली आपकी फिल्में कौन कौन सी हैं, मतलब किन फिल्मों में हम रितेश की राइटिंग को फिर से देख पाएंगे? मैं एज ए फैन ऑफ यू, मैं डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ उन फिल्मों का, तो मुझे प्लीज बताइए।
इस साल मेरी अगली फिल्म जो शायद आपको देखने को मिले वो है कहानी 2, जिसमें मैंने संवाद लिखे हैं। उसके बाद मैंने दोबारा, जिनका आपने इस इंटरव्यू में नाम लिया, सुरेश नायर साहब के साथ कमांडो 2, जो कमांडो 1 का सीक्वल है, वो लिखी है, वो शायद आपको 6 जनवरी को देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक खूबसूरत रीमेक है शेफ नाम की, एक अंग्रेजी फिल्म का, जो जॉन फावरू साहब ने बहुत पहले बनाई थी। उस फिल्म के बारे में एक हिंदुस्तानी दिल क्या कहता है, ये वापस एयरलिफ्ट की टीम, राजा मेनन, मैं और सुरेश, हमने ये पिक्चर लिखी है, जो मुझे लगता है कम से कम आपको तो सजीव बहुत अच्छी लगी।
जी रितेश, और ये जो कहानी 2 आप बना रहे हैं, क्या ये कहानी की जो पहली किश्त थी उसका सीक्वल है या एक कोई नई स्टोरी आपने लगाई है इसमें?
कहानी 2 सीक्वल इन स्पिरिट है सजीव, कंटिन्यूएशन नहीं है कहानी की। मदर ऑफ अ स्टोरी के थीम पे एक और अलग कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज कहानी 2 में भी सुजॉय ने दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आए।
जी, सुजॉय के साथ आपका ये कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस। अच्छा रितेश, एक आखिरी सवाल, जावेद अख्तर और सलीम खान की जो जोड़ी थी उसको आप अपना आदर्श मानते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि जावेद साहब जो है वो इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनने आए थे, जो कि वो आज तक नहीं बन पाए, क्या आप भी कभी निर्देशक वाली टोपी पहनना चाहेंगे भविष्य में?
नहीं, मैंने पढ़ा था कि जावेद साहब कहते हैं वो निर्देशक इसलिए नहीं बने क्योंकि वो लेजी हैं, और मेरे आदर्श हैं तो मैं भी थोड़ा सा लेजी ही हूँ। निर्देशन बड़ी मेहनत का काम है, बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है मैं राइटिंग में खुद अपना नाम नहीं, मैं राइटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली बात नहीं है, बट राइटर्स की हालात में कुछ सुधार आए उसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ अपने काम के थ्रू। एक बार मेरा वो मिशन पूरा हो जाए और कोई ऐसी कहानी लगे कि नहीं ये सिर्फ मुझे ही कहनी चाहिए या मैं ही कह सकता हूँ, किसी और निर्देशक से बेहतर कह सकता हूँ, तब शायद मैं निर्देशन करूँ। वरना कहानी कहने की जो अपॉर्चुनिटी है, मैं साल में 2 या 3 या 4 कहानियाँ कह सकता हूँ जबकि निर्देशक एक ही कह सकता है, तो वो एक एडवांटेज है राइटिंग का, और इसलिए राइटिंग मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी हमेशा।
ओके रितेश भाई, आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रितेश, जाते जाते आपकी जितनी भी फिल्में अब तक आई हैं, उन फिल्मों में से कोई एक गीत आप चुन लीजिए जो आपको बहुत पसंद है, और उसकी पसंद होने की वजह भी हमें बताइए, और वो गीत मैं अपने श्रोताओं को सुनवाऊंगा और उसके बाद हम इस इंटरव्यू का अंजाम तक पहुंचाएंगे।
सजीव, नमस्ते लंदन में एक गाना है, एक सिचुएशन बेस्ड गाना है, यही होता प्यार है क्या। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी राइटिंग में हम एक जो शायद मणिरत्नम साहब से एक आइडियल मेल हीरो, एक आदर्श पुरुष उसकी तलाश में है, और ऐसी ही सिचुएशन नमस्ते लंदन में थी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में, तो ये गीत मुझे हमेशा उस आइडियल की याद दिलाता है, इसलिए अच्छा लगता है।
ओके रितेश, हम यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। दोस्तों सुनिए नमस्ते लंदन का ये गीत जो रितेश को बहुत पसंद है। साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, अगले सप्ताह मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी नए फनकार के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए, म्यूजिक सुनिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।
एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ उभरते हुए कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया सजीव सारथी ने।
Back India.